आज रात को काफी जहमत थी कि आज ये जूम यहाँ से नहीं चल रहा है और यहाँ पे कभी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं। अब तो खुद वो जूम वालों की पॉलिसी है, बहुत कंट्रीज बताते हैं कि बैन। पहले तक तो ये था कि ज्वाइन होना बैन नहीं था, अब शायद ज्वाइन होना भी बैन कर दिया है। तो लिहाजा हम सिर्फ आवाज के जरिए से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अगर आवाज सही आ रही है तो जरा सलवात पढ़ते मोहम्मद और मोहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले
दुआएं
मोहम्मद वाजल फरजहुम जजाक अल्लाह।
जमाना अलैहि सलातो वसलाम से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला بسم الله सवाब की भी मजलिस है, तो उनके लिए अता फरमाए। फिर सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على ماه مبارک کے رمضان کا دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے اور یہ دوسرا اشرا بہت زیادہ وقت ہے. اسی میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی مجاز ہے اور پہلی شب حج. روزے کے موقع پر جب تک انسان رکھتے تب تک اس مہینے سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا. ہمارے خلق ہونے پر مقصد عبادت ہے. روزہ بھی نماز کی طرح عظیم شان عبادت ہے. عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. جب تک انسان عبادت کے باطن کو نہ سمجھے تب تک عبادت میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا اور سکون نہیں ملتا. ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اہل بیت قرآن نے ہمیں عبادتوں کی باطن کی طرح متوجہ کرنا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نماز لوگوں کے لیے بہت سخت ہے مگر جو خاشعین ہے ان کے لیے نماز بہت لذت ہے. جو خاشعین نہیں ہے ان کے لیے نماز میں لذت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. لیکن جو خاشعین ہے ان کے لیے نماز میں بے پناہ لذت. اب یہ خاشعین کون ہے؟ خاشعین وہ ہیں جنہوں نے نماز کے باطن کو سمجھا ہے. اسی طرح سے روزہ ہے. اگر روزے کے باطن کو آپ نہ سمجھیں تو یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام. اور البتہ اس کا بھی فائدہ ہے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. ایک واجب ادا ہو گیا، اللہ کے نافرمان نہ رہے. مگر جو مقصد ہے عبادت کا ہم اسے نہ پا سکتے. مثال عرض کر لوں، جیسے اخروٹ ہے چلکے کے ساتھ پورا اخروٹ، تو اوپر چھلکے میں کوئی مزہ نہیں ہے. اس کے باطن میں جو مغز ہے جب اخروٹ کو توڑیں گے تو جو اندر مغز ہے اس میں مزہ ہے، اس میں ٹیسٹ ہے. تو روزہ بھی ایسا ہے. روزے کہ اگر ظاہر کو دیکھیں گے تو بھوک اور پیاس ہے، कोई इसमें मजा नहीं है, लेकिन जब रोजे के बातिन को देखेंगे तब पता चलेगा कि रोजा कितनी अजीम इबादत। अब रोजे के बातिन क्या है? बातिनी रोजा ये है कि सातों आजा रोजे से रहे, यानी जबा रोजे से रहे गुनाह न करे, आंख रोजे से रहे गुनाह न करे, कान रोजे से रहे, हाथ पांव सातों आजा रोजे से रहे। इसका क्या हुआ? अगर सातों आजा रोजे से रहे तो आपका विल पावर इस महीने में कई सौ गुना बढ़ जाएगा। आप आंखों के गुलाम न रहे, शिकम के गुलाम न रहे, जबान के गुलाम न रहे, इतना विल पावर, इतना इरादा आपका मजबूत हो गया कि ये तमाम आजा आपके इरादे के ताबे हो। अब ये कोई मामूली चीज नहीं है जो कुरान और रोजा सिखला रहा है। दुनिया में जितने अजीब इंसान आपको मिलेंगे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, आप देखेंगे कि उनके इरादे बहुत मजबूत, बड़े बड़े इंकलाब लाने वाले रहबर और रहनुमा इसलिए कामयाब हुए, उनके इरादे मजबूत थे। यानी अल्लाह पाक रोजे के जरिए से आपको इनर पावर देना चाहता है, आपके इरादों को मजबूत करना चाहता है। जब आपके इरादे मजबूत हो गए तो दुनिया का हर मुश्किल काम आप कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। यानी रोजा आपको भूख प्यास सिर्फ देना नहीं चाहता, रोजा आपको पावर देना चाहता है, ताकत देना चाहता है। और गहरा बातिन तलाश करें रोजे का। रोजे का बातिन ये है, न सिर्फ सातों आदा पे कंट्रोल रहे, बल्कि इंसान अपने ख्याल को भी पाक करे, सात आजा भी कंट्रोल में आ गए, गुनाह से महफूज रहे। अब ख्याल की तहारत का नंबर है कि ख्याल भी पाक रहे और आपके कंट्रोल में रहे। दुनिया में 1% से कम लोग हैं जो ख्याल के गुलाम ना हो। एक मिनट आप अपने ख्याल को एक जगह पे रोक कर दिखाएं, असल एक मिनट के लिए कहीं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो रहे। 99% लोग नहीं कर पाएंगे। कभी घर का ख्याल, कभी बाजार का ख्याल, यानी इंसान आजाद वो है जिसने अपने ख्याल को गुलाम बना लिया। आजादी इंसान की फितरत में है, मुसलमान हो या गैर मुसलमान आजादी चाहता है। और हकीकी आजादी तब मिलेगी जब आप सातों आजा को अपना गुलाम बनाते, न कि उनके गुलाम बने। उससे बढ़ के तहारत ये है, आजादी ये है कि आप अपने ख्याल पे कंट्रोल कर लें। आप पूछेंगे इसमें क्या फायदा होगा? इसमें दुनियावी इतने फवायद है कि आप हैरान हो जाएंगे। आज दुनिया में जो बीमारियां हैं, 60% उनका ताल्लुक ख्यालात से है। जब परेशान ख्यालात आते हैं या नेगेटिव ख्यालात आते हैं
इंसान डिप्रेशन टेंशन में चला जाता है, और जब डिप्रेशन में जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके हार्ट को, दिल को, जिगर को, फेफड़ों को, किडनी को, नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्ट सिस्टम, तमाम निजामों को बर्बाद करता है। 60% से ज्यादा बीमारियों का ताल्लुक डिप्रेशन से है, ख्यालात से है। यानी यहां तक कि ये बुरे ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाते हैं, न दुनिया न आखिरत। अब आप समझे, ख्याल की तहारत असल रूह है, रोजा है, रोजे का रूह ये है, सोल ये है, निचोड़ ये है। ख्याल पे कंट्रोल कर ले। आप मिसाल अर्ज कर दो, आप किसी शादी में गए, वहां आपकी बेइज्जती हुई, किसी ने गाली दी, आपको बुरा भला कहा या आपको मारा। अब आप घर वापस आए, परेशान है, ये ख्याल कि मेरी बेइज्जती हुई है सोने नहीं दे रहा है, आए मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, क्या करूं, मेरी आबरू चली गई, आधी रात गुजर गई, टेंशन में नींद नहीं आ रही। क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिलती है कि अपने ख्याल को कैसे तब्दील करें, क्या नेगेटिव ख्याल को कैसे स्टॉप करें। इतने लोगों के पास ये ट्रेनिंग है, 1% लोग भी दुनिया में ऐसे नहीं। चाहे आप बादशाह हो जाए, मगर आप ख्याल के गुलाम है। मल्टी बिलियनर बन जाए, ख्याल के गुलाम है। सुकून तब मिलता है जब आप खुद अपने ख्याल के मालिक हो जाए। वो अजीम शान आजादी रोजा देना चाहता है, अपने ख्याल के आप मालिक हो, न कि ख्याल आपको कहां से कहां ले जाए। तो अजीजाने गिरामी, ख्याल का घोड़ा रुकने वाला नहीं है। जैसे दिल की धड़कन चल रही है, हमेशा चल रही है, रुकती नहीं है। सांस लेना जरूरी है जिंदा इंसान के लिए। जिस तरह सांस निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिल की धड़कन चल रही है, वैसे ख्याल का घोड़ा भी चल रहा, मगर ये एनर्जी जाया हो रही है। और अगर नेगेटिव है तो पूरे सेहत को बर्बाद कर रही है। रोजे का मकसद ये है कि ये अजीम शान एनर्जी, इसे जाया होने से बचा लिया जाए, और ख्याल को जिक्र खुदा में मशगूल कर दिया जाए, ताकि हकीकी सुकून मिले, हकीकी जिंदगी का मजा मिले, रूहानी बुलंदियां मिले। वो किस तरह से? मसलन ख्याल और सांस को मिला के जिक्र किया जाए। ये असल ट्रेनिंग है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन है। ख्याल और सांसों को मिला के खुदा का जिक्र करें। दुआए अबी हमजा सुमाली, जो माह मुबारक रमजान का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा रूहानी डिश है, ग़िज़ाए रूहानी है। उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चौथे इमाम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये रोजे का मकसद है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या फरमा? एक सांस में जितनी मर्तबा कह सकते हो, यानी सांस रोक लो एक सांस में, यानी बड़ी सांस ले लो, बड़ी सांस नहीं, अब एक सांस में जितनी मर्तबा कह सकते हो कहो या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे, क्योंकि ख्याल का घोड़ा कंट्रोल में तब आएगा जब सांसों को रोक दिया जाए। सांस लेना और निकालना और ख्यालात के मिलाप के जरिए से आप ख्याल की गुलामी से निकल सकते हैं। ये मौला की ट्रेनिंग है। या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्ब, यहां तक कि सांस उखड़ जाए, ये एक ट्रेनिंग। रिस्क रोजी अगर किसी की कम है तो अहले बैत ने क्या फरमाया, हर नमाज के बाद सजदे में चले जाए और एक सांस में 14 मर्तबा कहें या वहाब 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 या वहाब, क्योंकि सांस रोकेंगे तो ख्याल कंट्रोल में रहेगा। ये ट्रेनिंग अहले बैत ने दी है, सांस के जरिए से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सांस को रोक कर सजदे में 14 मर्तबा कहें या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब या, क्योंकि सांस रुकती है तो ख्याल भी एक जगह पे रुकता है। ये बेहतरीन ट्रेनिंग है, वरना ख्याल कहां कंट्रोल में आने वाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दो रकअत नमाज पढ़ के दिखाओ, इधर उधर का ख्याल ना आए, अल्लाह से गुफ्तगू करो, अगर कामयाब हो जाओ तो जन्नत वाजिब। 40 साल गुजर गए, अभी तक 2 मिनट ख्याल पे तो रहा, मगर ये ट्रेनिंग जो रोजे में है कि सांस के साथ, अब एक तो एक सांस को रोक के, और एक ट्रेनिंग ये कि नहीं रोको ना, सांस जब लो खींच के सांस लो, ज़बान पे उंगली रखो और खींच के सांस लो, कहो ला इलाहा, और जब सांस निकालो तो कहो इल्लल्लाह। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये होगा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे इधर उधर के ख्यालात नहीं आएंगे, और ज़बान के जिक्र से इंसान थक जाता है, मगर ख्याल और सांस के जरिए से जो जिक्र करेंगे कभी थकेंगे नहीं। जब थकेंगे नहीं तो जिक्र रुकेगा नहीं, अल्लाह अकबर, जिक्र रुकेगा नहीं, यानी हमेशा जिक्र खुदा में मशगूल रहेंगे अगर ये ट्रेनिंग मिल जाए। हर सांस लेते वक्त ख्याल से, जबान से नहीं, ख्याल से कहे ला इलाहा, और जब निकाले तो कहे इल्लल्लाह, इलाह इल्लल्लाह। इसी तरह से कितने अधिकार हैं, सांस ले तो कहे या रहीम, सांस निकाले तो कहे या करीम। दुआए जोशन कबीर में अल्लाह के हजार के करीब नाम है। एक नाम जब ले तो ख्याल से सांस लेते वक्त कहें, और दूसरा नाम अल्लाह का सांस निकालते वक्त अदा करें। अजीजों, ये इबादत बहुत बड़ी इबादत है, और ये आजादी बहुत बड़ी आजादी है। इस ट्रेनिंग के बाद खुदा अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तहिबीन, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अपने जाहिर और बातिन को पाक करते हैं। जब ख्याल को आपने पाक कर लिया तो अब न परेशान कुन ख्यालात आएंगे, न शैतानी ख्यालात आएंगे। इंसान पहले गुनाह नहीं करता, पहले गुनाह का ख्याल आता है। आपने रोजे के जरिए से इस्मत हासिल कर ली, अगर इस ट्रेनिंग में कामयाब हो गए कि ख्याल की तहारत। माजरत के साथ आज ये जूम यहां से नहीं चल सका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बहरहाल ये टेक्निकल मुश्किलात हैं, ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारे प्रोग्राम वो नहीं चल पाते इन ममालिक में। आइए मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इस दुआ से ही मसाइब का आगाज करें। वो मेरे कैदी इमाम, वो मेरे मजलूम इमाम, हमें ख्याल की तहारत सिखा रहे। एक सांस में जितनी मरतबा कह सकते हो कहते जाओ, या रब या रब या रब या रब, यहां तक के सांसें टूट जाए। या रब या रब या रब या रब या रब। अगर अल्लाह के हजार से ज्यादा नाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने या रब का इंतखाब क्यों किया? रब की मानी है मेरे पालने वाले, ये मेरे अल्लाह तूने मेरी परवरिश की है, तूने मुझे पाला। और ये क्यों कहा कि सांस उखड़ जाए? यानी एक वक्त के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक दिन आएगा हम बिस्तर पे लेटे हुए होंगे, चारों तरफ रिश्तेदार रो रहे होंगे, डॉक्टर को लेकर आएंगे, डॉक्टर कहेगा बचने की कोई उम्मीद नहीं। यानी सकरात के वक्त की मौला सज्जाद ट्रेनिंग दे रहे। जब तेरी सांसें उखड़े रोह बदल से जुदा हो, तेरी ज़बान पे अल्लाह पाक का ये नाम हो, या रब या रब। आखिर रब क्यों, कोई और नाम इमाम ने क्यों नहीं कहा? ऐ अज़ीज़ो, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम का हुक्म है एक साल अगर किसी हैवान को भी पाला है और ईद ज़ुहा पे कुर्बानी देना चाहते हो, जिस हैवान को एक साल पाला है अपने हाथ से उसकी गर्दन पे छुरी न चलाओ। अल्लाह, क्यों? एक साल तक तुमने उसकी परवरिश की है, उससे उनस मोहब्बत हो जाती, उसे बेचकर दूसरा हैवान लो अगर कुर्बान कर, जिसने पाला है उसकी गर्दन पे छुरी न चला। अब देखिए रब क्यों कहा इमाम, यानी खुदा से इंतजा करे, मेरे अल्लाह तू मेरा रब है, माँ के पेट से लेके आज तक तूने मुझे पाला है, तूने मेरी परवरिश की है, ए खुदा तू कैसे मुझे जहन्नम की आग में फेंक देगा। سب مل کے گئے یا رب یا رب یا رب یا رب حسین مولا کا بھی رب ہے میرے اللہ تجھے حسین مولا کے آخری اے سجدے گاہ واسطہ مولا حسین کا بدل رخواں سجر ستر قدم پہ بھر دیکھ رہی خوش مرگ ہاتھ نہ خنجر چلا میرا حسین دل کا پیاسا نہ خنجر چلا یہ جگہ نبی کے
پروردگار مولا حسین پاک کے سب کے لیے روزوں کے ذریعے سے ہمیں ظاہری باطنی طہارت نصیب فرماؤ, خصوصاً خیالوں کی طہارت نصیب فرماؤ, اور جو ذکر خدا اور ذکر اہل بیت ہوا اس کا ثواب, جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے روح کو پہنچا, ان کے جوان معصومین نے جگہ تا فرما, اور جتنے سامعین ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, جو لوگ دعا کے لیے التجا کر چکے ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما, میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما, جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما, یمن کے مظلوموں کی مدد فرما, شام میں پاک بی بی زینب کے روزے کی جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما, ظالموں کے خاتمے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما, ہمیں ان کے خادم و غلاموں میں جگہ عطا فرما. ربنا ما تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على تواصل وعلى حافظ التواصل. في امان.
جی مرتضی بھائی کو کو ہوسٹ بنا دیں. رضوان بھائی, مرتضی بھائی,
جی آواز آ رہی ہے میری سب کو؟
جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اے قیدیوں دعا دو یہ دل نہ ہم پہ آئے لے کر دعا ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتے چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پاؤں کے آبلے بھی رو کر بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نام احراموں کے لب پہ آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رولا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं रेहान कैदियों में बर पाथा शोर गिरिया पलकों से कर रही थी मातम जो बिल्त जहरा सजाद नौहा खा है नौहा सुना रहे क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं।